हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहां हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 382। अपनी आंसू भरे आंखों से अनय की तरफ देखते हुए मनस्वी ने कहा, तुम्हारे हिसाब से सबसे ज्यादा बुरी और पत्थर दिल मैं ही हूं ना, जिसने बस दूसरों को ही दुख देना सीखा है। लेकिन नहीं, मुझे भी दुख होता है, तकलीफ होती है, कम से कम तुम्हारी वजह से, जब तुम ही मुझे गलत समझते हो या फिर मुझे समझने की शायद कोशिश भी नहीं करते। उसकी बातें सुनकर अनय को समझ नहीं आया कि वो ये सब क्यों बोल रही है, और उसके आखिरी सेंटेंस पर अनय बोला, मेरी वजह से? लेकिन मैंने क्या किया? मैंने कब तुम्हें कोई तकलीफ दी? मैंने कब तुम्हें? अनय अपनी बात पूरी कर नहीं पाया, क्योंकि उसे शायद कुछ तो याद आ गया था। उसके इस सवाल पर मनस्वी ने तंजिया लहजे में मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और अजीब ढंग से हंसते हुए बोली, हाँ, तुमने कभी मुझे तकलीफ नहीं दी, कभी गलत नहीं समझाना मुझे। सच में? पूछो अपने आप से। अच्छा ठीक है, चलो ये बताओ, क्या सच में हम हस्बैंड वाइफ हैं? हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता शायद कभी नहीं हो सकता। क्यों? तुम मुझे पसंद नहीं करते अनय? नहीं चाहते हो ना मुझे अपनी लाइफ में, अपने साथ? बताओ, आज मुझे इस सवाल का जवाब दे दो। तो फिर मैं, हम दोनों का डिवोर्स? इतना बोलते हुए मनस्वी की आंखों में आंसू भर आए और उसकी आवाज़ भी एकदम कांपने लगी। वो चाहकर भी इसके आगे नहीं बोल पाई और उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर लुढ़कने लगे। वहीं सामने खड़े अनय को भी ऐसी किसी बात की उम्मीद नहीं थी। उसे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि उन दोनों के बीच की ये बात इतनी बढ़ जाएगी कि मनस्वी उनके डाइवोर्स तक के बारे में सोच लेगी। इसलिए डाइवोर्स की बात बीच में आते ही वो अपनी जगह पर एकदम ही जम गया, क्योंकि अब तक उसे तो आदत हो चुकी थी तरह की लाइफ उसके साथ जीने की, तो उसने कभी इस बारे में नहीं सोचा, मनस्वी से अलग होने के बारे में। और आज से पहले कभी उन दोनों के बीच डाइवोर्स की बात भी नहीं हुई थी। आज अचानक से मनस्वी ने ये बात कही तो कहीं ना कहीं अनय को अपनी गलती रियलाइज हुई और वो सोचने लगा, शायद पिछली सुबह जब उसने मनस्वी की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया था और कई बार उससे सवाल किए और उसे गलत नहीं समझा, शायद इस वजह से ही वो इस डिसीजन पर पहुंच गई है। और तो और, कल सुबह वो उसके रोकने पर भी वहां पर नहीं रुका, जबकि कल वो उसके साथ वहां पर ही रुकना चाहती थी और उससे कुछ बात नहीं करना चाहती थी। ये सारी बातें सोचते हुए अनय ने काफी उम्मीद भरी नजरों से मनस्वी की तरफ देखा, जो कि दूसरी तरफ देखते हुए लगातार रो रही है। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, जिन्हें वो ज्यादा दूर तक अपने चेहरे पर बहने नहीं दे रही है, अपने हाथों से ही लगातार पोंछ रही है। वो शायद अनय के सामने रोकर उसकी सिंपथी नहीं लेना चाहती और उसके सामने कमजोर भी नहीं दिखना चाहती, क्योंकि वो उसे बहुत ही मजबूत समझता है और उसके सामने वो वही बनकर रहना चाहती है। लेकिन वो हमेशा ही उतनी स्ट्रांग नहीं रह पाती है, वो उसके सामने कमजोर पड़ना चाहती है, उसकी बाहों में बिखरना चाहती है, जिसे वो समेटे, और अपना ये सॉफ्ट साइड वो सिर्फ और सिर्फ अनय को ही दिखाना चाहती है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि अनय इस तरह से या किसी भी तरह से एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है भी या नहीं। अनय भी अपने मन की फीलिंग को लेकर श्योर नहीं है, लेकिन मनस्वी को इस तरह रोते देख उसे अपने दिल में एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ, जो कि आज तक उसे कभी भी महसूस नहीं हुआ है। और वो आगे आकर उसे खींचकर अपने गले से लगाते हुए बोला, तुम रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, सो जस्ट स्टॉप क्राइंग। मनस्वी को खींचकर अपने करीब करते हुए अनय ने उसके कान में ये बात बोली तो उसकी ये बात सुनकर मनस्वी और ज्यादा जोर से रोने लगी और बोली, मुझे पता है मैं तुम्हें कभी भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन रुलाया भी तुमने ही है मुझे, और अब चुप कराने की जगह और रुला रहे हो। आई हेट यू। इतना बोलते हुए उसने हल्के से उसके चेस्ट पर मारा तो अनय हल्का सा मुस्कुराकर उसके बालों पर किस करते हुए बोला, आई नो यू हेट मी सो मच। उसकी ये बात सुनकर मनस्वी धीमी आवाज में बोली, सच अ स्टूपिड इडियट। और इतना बोलते हुए अपने दोनों हाथ अनय के इर्द गिर्द लकेटते हुए वो और कसकर उसके गले से लग गई, और साथ ही उसने अपना चेहरा भी उसके सीने पर रख लिया और उसकी आंखों से निकलती हुई आंसू की बूंदें अनय की शर्ट को गीला करने लगी। अनय को समझ नहीं आया कि वो उसे इस तरह से रोते हुए क्यों नहीं देख पा रहा है और इस वक्त उसे अपनी बाहों में क्यों भर ले रहा है, और वो बस उसे कैसे भी शांत कराना चाहता है, लेकिन क्यों ये उसे समझ नहीं आ रहा, और शायद अभी वो समझना भी नहीं चाहता। इसलिए उसी तरह से खड़े हुए मनस्वी के सिर पर अपना चेहरा टिकाते हुए उसने कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन रिलैक्स होते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरी तरफ, दोपहर का वक्त, आदित्य और सुनैना कॉलेज में। आदित्य ने पहले ही वहां के हेडमास्टर और प्रिंसिपल सारे इंपॉर्टेंट लोगों से बात करके सुनैना के सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और बाकी चीजों का इंतजाम करवा दिया है, जो भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए आज सुनैना को बाकी लोगों की तरह किसी भी लाइन में नहीं लगना पड़ा। उसे इस तरह के VIP ट्रीटमेंट की आदत नहीं है, लेकिन अभी उसके सिर में दर्द भी हो रहा था तो उसे ये सब कुछ ठीक ही लगा, क्योंकि वो खुद भी ज्यादा देर शायद खड़ी ना हो पाती। इसलिए उसने फिलहाल कोई भी कंप्लेन नहीं की और आदित्य का हाथ थामकर चुपचाप वहां के कॉरिडोर में घूम रही है। और उनके आसपास से निकलते हुए स्टूडेंट ऊपर से नीचे तक उन दोनों की तरफ देखते हुए आपस में कुछ ना कुछ बात कर रहे हैं, जैसे कि वहां कॉलेज कैंपस में अक्सर ही नए कपल को देखकर खुसर फुसर होती रहती है। आदित्य और सुनैना दोनों ही इन सब बातों को इग्नोर करते हुए एक साथ वहां से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन तभी सुनैना सामने से निकलती हुई एक लड़की पता नहीं गलती से या फिर जानबूझकर उससे टकरा गई। सुनैना के बात ठीक से समझ नहीं पाई क्योंकि वो इस वक्त कुछ और ही सोच रही थी। आदित्य उसके साथ चलता हुआ कुछ बोल रहा है, लेकिन उसका ध्यान आदित्य की बातों की तरफ भी नहीं था। लेकिन लड़की से टकराने के बाद सुनैना का ध्यान उसके चेहरे की तरफ हुआ, लेकिन उस लड़की ने कुछ भी बोलने से पहले सुनैना के चेहरे की तरफ थोड़ी ध्यान से देखा और फिर उसे पहचानते हुए बोली, तुम अभी भी यहां क्या कर रही हो? मुझे तो लगा था कॉलेज छोड़ दिया होगा तुमने, लेकिन तुम तो यहां पर ये। उस लड़की ने सुनैना के सामने आकर खड़े होते हुए ये सब बोला और सुनैना उसकी तरफ नजर उठाकर देखती है तो उसने देखा वो लड़की कोई और नहीं अवंतिका की सहेली पूनम थी। हाँ, वो सुनैना की भी क्लासमेट है, लेकिन उन दोनों में कभी भी इतनी दोस्ती नहीं रही क्योंकि उन दोनों में ही ज़्यादा नहीं बनती और सुनैना पहले ही ज्यादा दोस्त बनाना पसंद नहीं करती थी। लेकिन उसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि पूनम एकदम से सामने आकर उसे ये सब कुछ बोलेगी, जबकि आज वो कॉलेज इतने दिनों के बाद आ रही है। जहां तक सुनैना को याद है, उसकी पूनम से ऐसी कोई भी बहस या लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था, लेकिन सुनैना उसकी बात का कोई भी जवाब दे पाती उससे पहले आदित्य ही थोड़े से गुस्से में बोला, ओ हेलो मैडम, अपने काम से काम रखो और मेरी वाइफ के कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोच लेना। आदित्य ने उसे गुस्से में उंगली दिखाकर लगभग वार्निंग देते हुए कहा और आदित्य के इस तरह से बोलने पर पूनम ने अपनी आंखें नचाते हुए उन दोनों की तरफ देखा और काफी लापरवाही से बोली, वाइफ, सीरियसली तुमने इसमें ऐसा क्या देखा जो इससे शादी कर ली? देखने में तो वैसे ठीक ठाक ही लगते हो और इतनी तो समझ होगी। पूनम उसी तरह से अपने अलग ही एटीट्यूड में ये सारी बात बोल रही है और सुनैना काफी हक्का बक्का होकर उसकी तरफ देखती हुई जैसे सदमे में है।
उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या बोले, तभी आदित्य ने फिर से बोला, तुमसे मतलब? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सुनैना के बारे में कुछ भी बोलने की? और हाँ, मैं समझदार हूँ इसलिए ही मैंने उससे शादी की है, ओके? सो माइंड योर ओन बिजनेस और हटो हमारे रास्ते से। आदित्य को ऐसे गुस्से में देखकर पूनम थोड़ा सा डरकर कुछ कदम साइड में हो गई और वो वहां से हटने ही वाली थी कि तभी पीछे से अवंतिका की आवाज आई, हाँ पूनम, हटी जाओ इनके रास्ते से, तुम्हें नहीं पता मेरे भाई का इसने क्या हाल किया है। वैसे गलती तो इस सुनैना की है, कभी किसी लड़की के साथ वो कभी किसी। अवंतिका की बातें सुनकर आदित्य गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, यू जस्ट शट अप, नहीं तो तुम्हारे भाई के जो हाल हुए थे ना, वो तो कुछ भी नहीं है। उसका तो तुम शुक्र मनाओ कि वो जिंदा बच गया, नहीं तो जिस तरह से हो मेरी सुनैना को जान से मारने की कोशिश की ना, मुझे उसकी जान लेने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। वो तो बस शुक्रिया अदा करो तुम अपनी कजिन बहन का, जिसकी वजह से जाकर वो अभी भी सही सलामत है, नहीं तो मैं उसका वो हाल करता और तुम ज्यादा उसकी तरफ से बोलोगी तो तुम्हें फिर अपनी। आदित्य ने अवंतिका की तरफ देखते हुए ये सब कुछ बोला तो अवंतिका उससे डरने की एक्टिंग करती हुई थोड़ा सा पीछे हटकर बोली, ओ सॉरी सॉरी, डर गई मैं तो, सीरियसली मैं बहुत ही ज्यादा डर गई, प्लीज प्लीज मेरे साथ ऐसा कुछ मत करना, सॉरी। उसकी एक्टिंग देखकर आदित्य इरिटेट होते हुए बोला, अपनी बकवास बंद करो अवंतिका, तुम भी अच्छी तरह से जानती हो तुम्हारा भाई भी कोई इतना ज्यादा दूध का धुला हुआ नहीं है। अवंतिका आदित्य की बात को एकदम ही हवा में उड़ाते हुए बोली, हाँ ठीक है वो जैसा भी है, लेकिन तुम अपनी बीवी को कुछ क्यों नहीं बोलते? इसकी भी तो गलती है, आखिर क्यों इसने मेरे भाई को धोखे में रखा और क्यों उसे अपने पीछे आने दिया? इतनी भी कोई सती सावित्री नहीं है तुम्हारी बीवी, इसलिए प्लीज दूसरों को धमकियां देने से पहले अपनी वाइफ को कंट्रोल में रखना सीखो। अवंतिका की बातें सुनकर आदित्य को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, वो पहले ही विराज पर इतना ज्यादा गुस्सा था और ऊपर से अवंतिका उसे हर चीज में सपोर्ट कर रही थी, उसके सामने भी, इस वजह से वो अब अवंतिका पर भी उतना ही गुस्सा है। लेकिन वो गुस्से में फिर से उसे कुछ भी बोल पाता उससे पहले ही सुनैना ने अवंतिका से कहा, ये सब कुछ तुम क्या बोल रही हो अवंतिका, तुम्हें अभी पूरा सच नहीं पता है और जब तुम्हें सच पता चलेगा ना तो तुम खुद ही अपने कहे पर पछताओगी, ये जानकर कि तुम्हारे भाई ने मेरे साथ प्यार किया है उससे मुझे क्या क्या झेलना पड़ रहा है, सुनैना उसे जवाब देते हुए बोली। तो अवंतिका ने उसे हाथ दिखाकर चुप कराते हुए कहा, ओ प्लीज, मेरा भाई जैसा भी है तुमसे तो अच्छा ही है, कम से कम अगर वो तुमसे प्यार करता है तो पता है उसने तुम्हारे अलावा किसी और लड़की को नजर उठाकर भी नहीं देखा, लेकिन तुम हो कि एक साथ पता नहीं कितने।